welcome to this special broadcast coming to you from the Kargil War Memorial here in Dras. Today, we the people is we the soldiers. This is our special broadcast to commemorate 15 years of the Kargil War. And we're in an absolutely majestic setting. This is the Veer Bhumi at the War Memorial, and all around me are epitaphs to the fallen soldier. There are 315 epitaphs to the fallen soldier here, and it is really, in a sense, being on hallowed grounds. We have many, many soldiers here all around us in Veer Bhumi, and we also have many voices, including families of our martyred soldiers, who are going to give their perspective on We the Soldiers today. We're asking, 15 years after Kargil, how much has life improved for the Indian soldier? Why is the Indian Army facing a shortfall of officers despite such inspiring tales of heroism that emerged from the Kargil War? And of course, there are individual stories of courage, individual stories of loss, individual stories of pride mixing with pain. And for, in many ways, those who live on, the families of those who are martyred, are actually as much an example of courage and fortitude as those who have made the supreme sacrifice, putting the country before self. And I'd like to start with Vishal Batra, if I may. Vishal, you're of course Vikram Batra's twin brother. The first time you came to Kargil was when you came with me when it was 10 years, when it was a 10-year commemoration. And I still remember it was so moving that at that time you wrote a letter to Vikram. Here, we sat on Batra top and you wrote a letter, and you left the letter here because you felt that somewhere Vikram could, you could feel Vikram's presence, and you could feel that he would get your word somehow, and you left the letter there and you saluted right after placing the letter on Batra top. Memories of Vikram must be just like yesterday.
Barkha, to be honest, I think it doesn't seem like that the thing happened 15 years back.
Yes.
All through those last 15 years, we've been talking about Vikram so much. And to me, you know, a soldier never dies. Vikram is still alive.
Yes.
And I thought so that it's been a while. And I think Vikram is calling back again. Why not go back again? It's been 15 years now. And of course, you know, during my civil life also, I come across so many people, you know, right from the defense, you know, from the schools. A lot of people come down and generally ask me that we've seen you somewhere. Are you related to Vikram? So I think all those memories have been so fresh that it's never that Vikram has been out of my memory ever, even for a single day. I still drive my inspiration from him because all those soldiers who laid down their life in the Kargil War, each one of them did a fantastic job for the nation. And I think the Indian Army is doing a fantastic job, and I always feel it's coming back to Vikram's home when I'm in Kargil.
You wanted to join the military as well, and you made three attempts and then you decided to do something else. Why do you think it is that our young people today do not want to join the military in the same way as somebody like Vikram or yourself did?
I think we still have to go a long way in terms of sharing the stories of these brave people who gave down their lives. Of late, you know, I was contacted by a student from Bangalore, and he sent me a message on my WhatsApp that, you know, I got a number from somebody, and I wanted to talk about Vikram. And when I you know, gave him complete information about Vikram, he told me that he had a presentation which he made in school in Bangalore, and that was primarily to encourage all the young people to join the Indian Forces. I think we have yet a path to cover when it typically comes down, going down to the schools, opening up the institutes where people can talk about the bravery of all the soldiers who laid down their life.
Colonel Thapar, you have actually been even more blunt and said, and your son, of course, Vijayant, was also martyred, you know, in this sector. Before I ask you to speak, if we just take a look at where we are sitting, there's, of course, Veer Bhumi here, the epitaphs. Right behind that, I can see Tiger Hill. You know, there's majestic authority today, Colonel Thapar, but 15 years ago, these peaks were taken by Pakistani intruders. And I think we underestimate the fact that the army actually delivered a miracle. They didn't have snow boots, they didn't have night vision devices, they didn't have ammunition. And the then Chief General Malik said, I'll fight with what I have. Colonel Thapar, but you feel there isn't enough respect for the soldier.
Barkha, I'll begin by saying that they will never die like the rest of us will die. Every day in the morning, when the sun rises and at sunset, we shall remember them. And as you said, on the left is the Tololing feature, which was attacked by two Rajrif, the first victory of this war in Kargil. And in that, I have the pride to say that my son took part in the capture of Barbad Bunker. Why the people do not are not so inclined to join the Indian Army? The fault does not lie with the boys themselves. The fault lies with elders like us, elders, leaders, pleaders, and the rest of us, you know.
Collective failure.
Collective failure to give them that kind of a patriotic fervor, that kind of a pride in the uniform that will bring them here. They would like to go to other professions which they find are more lucrative.
Is it really about giving greater financial incentives?
No. I think that is a very big misnomer. When we joined the army, we used to get 300 rupees, 360, 370 odd rupees.
Yes.
It is never for money. No soldier ever will charge a machine gun for thinking about money or things like that. There's a nation in front of him. He doesn't think of anything else.
So, ye failure kyun hai? Ye kis level pe failure hai?
There is failure from the top to the bottom.
From a young person's perspective, Vishal, your friends, would they sign up for the forge today?
You know, I remember these 15 years, a lot of people, you know, have named themselves as Vikram, and Vikram became an icon because I think after his bravery, a lot of people wanted to join. But
as
Colonel Thapar said, that we still have a gap to cover, right? It's not, while it's a collective failure, but if you look in hindsight, Barkha, is it that the government or the civil people or the army has done enough for pushing the people to join the forces? My answer would be no. I still remember when, one way it could be like when I met Major General Bakshi, and his son wrote a comic war stories on, I think 4 or 5 Paramir Chakra, and of course, Sandeep Unnikrishnan as well, right? That's the right way. So till the time you don't have that kind of enigmatic approach where you can actually go down and tell people about the bravery.
Yes.
Right. I think we will fail.
We also have another father of a martyr. We have Amol Kalia's father with us, and he's actually been a school headmaster. Sir, aap kya aaj apne bete ko to aap yaad karte hi honge. Aap yahan par kitni bari aa chuke hain jab se wo shaheed hue?
Main yahan pe dusri bari aaya hu.
Ji.
5 saal pehle jab 10 saal ke baad manaya gaya tab aaya hu.
बताइए अपने बेटे के बारे में कुछ लोगों को, कैसे याद करते हैं उनको आप आज?
एक बाप को अपना बेटा याद करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए होता, और मुझे गर्व है कि उसने ऐसा काम किया कि उसको मैं ही नहीं, सारा नेशन याद करता है, सारी फौज याद करती है, मेरे भाई सिविलियन सब याद करते हैं, तो उसको तो हर दिन याद करते हैं हम.
हिम्मत कहाँ से आती है? मैं अक्सर बहुत सी फैमिलीज को मिलती रहती हूँ. यहाँ पर 3 लोग ऐसे बैठे हैं, कर्नल थापड़, आप ही की जैसे है, आपका दर्द समझते होंगे.
गांव वाले हैं
आप? गांव वाले हैं? यू नो ईच अदर फ्रॉम बिफोर?
इनकी माता जी ने अमोल को पढ़ाया हुआ है.
अच्छा,
फर्स्ट क्लास.
लेकिन हिम्मत कहां से आती है टू कोप विद दिस लॉस?
मेरे को तो शुरू से इच्छा थी कि मेरे बच्चे जो हैं डिफेंस में जाएं. आई डोंट नो क्यों ऐसा पैदा हुआ. मेरे को ये लगता था कि फौज में मिनिमम चांसेस ऑफ करप्शन एंड मैक्सिमम चांसेस ऑफ सर्विस हैं. सो बीइंग ए टीचर, मैं ये चाहता था कि मेरे बच्चे भी ऐसी जगह जाएं जहां वो सेवा कर सकें. तो मैंने इंस्पायर किया है. आफ्टर हिज प्लस टू
जी,
तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए क्लियर कर गया है, तो मैंने उसको सपोर्ट किया.
आपने उनको इनकरेज किया?
बिल्कुल.
तो क्यों, आपको क्या लगता है आजकल शॉर्टेज क्यों है?
तो इसके लिए तो हम सबको प्रयास करना होगा, सरकार को भी, और ऐसी इमेज बनानी होगी
जी,
जो स्कूल्स में कॉलेजेस में जहां मोटिवेशन चाहिए बच्चों को मिलना चाहिए.
Colonel Thapar, is it only about motivation, or is it also about the fact that young people are able to see today that you have bureaucrats who will drag a disabled soldier to court for 750 rupees, 1000 rupees ke liye unko court le jate hain appeal mein? War wounded ki baat kar rahi hu.
That is very right. There is the story of Major DP.
Yes, we've extensively reported on it.
And
yes,
he comes to me very often. It's a very sad thing. The moving machinery is in the government, which shall give whatever the. Now you tell me, to make the ex-servicemen happy, you can't. You know, we have to see the holistic, the problem in the
yes,
holistic view,
yes.
Not only the serving soldiers. The impact. Say, if Vijayant was living, and if I was not well treated in the country, then it will have an impact on his morale. So it is a holistic thing. And the bureaucracy, I'm afraid, they are measuring up. Now, what is the reason for this? It's a historic thing ever since independence. They're trying to put the army in place or something of that sort.
Mm.
And we are not improving on that particular area.
Too much bureaucratic control.
Too much bureaucratic control.
First, I want to get Colonel Rakesh in. You know, the Bofors gun became one of the non-human heroes, in a sense, if I can call it that, of this war. And जैसे कि मैं कह रही थी, लोग समझ नहीं सकते कि किस सिचुएशन में ये ऑपरेशन विजय हुआ, किस सिचुएशन में विक्ट्री हुई. बिकॉज व्हेन वी लुक एट दीज माउंटेन्स ऑल अराउंड अस, एंड आई वांट आवर कैमरास टू गिव अस अ सेंस ऑफ वेयर वी आर सिटिंग वंस अगेन. एज आई सेड, वी आर राइट एट द बेस ऑफ द तोलोलिंग रेंज. राइट इन फ्रंट ऑफ मी इज टाइगर हिल. एंड आई एम थिंकिंग, कर्नल राकेश, ऑफ हाउ यू सॉफन दीज टारगेट्स विद एम्यूनेशन फॉर योर फॉर आर ओन सोल्जर्स टू क्लाइंब अप. वॉट रोल डिड द बोफर्स गन प्ले?
It played the role of a game changer. Initially, we had a limited number of pieces, and we had certain issues as far as the initial attacks went in, but wherein adequate number of artillery was brought in, and especially Bofors guns were brought in, because of the technical superiority, because of the capability that it enjoys, it turned the game entirely in our favor. And incidentally, even today, it remains the mainstay of the Indian Army as far as artillery is concerned. You mentioned earlier, there were some issues in 99 when General Malik said, we'll go ahead with whatever we have. Today, we have gone many notches to what was there in 99. We have wide variety of ammunition. The infrastructure has gone better. The gun remains the same. The willpower, the josh, the morale of everybody in the army remains the same.
All right, we've of course also got on the program two of our highest gallantry award winners. We've got Yogendra Yadav ji and we've got Sanjay Kumar ji, and we'll hear from them in just a minute. But Nitin, give us a sense. Javed Akhtar called this not just a victory, but he called this a miracle.
Yeah.
We were both here. Give us a sense of how enormous this task was.
Well, it was enormous, and as Javed Akhtar said, it was a miracle. And why it was a miracle? Because if you can see this Tololing, for instance, where we are sitting, it at night people climbed here, and they were up against all odds, really. And it was left to the young soldiers, young officers, young men. And they were all out of the IMA just in 1998, most of them. And they actually led the war. The young officers won us the war. And Bofors, of course, was their support. So why it was it? It was only the Indian Army could have done this. No other army could have actually evicted the intruders from the heights.
And do you want to respond briefly to what Colonel Thapar said, that even today, the soldier feels, maybe the man in uniform can't say it openly, but the soldier feels there isn't enough respect?
Well, certainly in the society at large, the respect to the soldier is going down, and we need to correct that, because unless the society steps up, unless everybody, like he said, like the government and the people, we will not get the right material for the army, because this is not something that people do for money. People do it for passion. People do it for the love of the country.
Now, here at the War Memorial, one of the most iconic faces who leads the briefing, and you know, by the way, there are 500 tourists on an average that come to this memorial every day. I think the Kargil War Memorial here has really shown the way, and it is so beautiful. And as I said, we're on the sacred ground of the Veer Bhumi here, 315 epitaphs to the fallen soldiers, anyone who's died in the line of duty since 1947. And of course, on the wall on the other side are actually every single name of the Kargil martyrs. और यहाँ पर मोहम्मद रजाक साहब हैं, वो रोज ब्रीफिंग करते हैं कि क्या क्या हुआ, किस तरह से अलग अलग जो पीक्स थे वो रिक्लेम हुए. सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये मूछ की कहानी क्या है? ये बहुत बहुत ही कंपेलिंग, मतलब एक तरह से एक मैग्नेटिक ड्रॉ है.
मूछ तो इसलिए रखा है क्योंकि मूछ से एक सैनिक का जो है काफी प्रभावित है, और इससे तो दुश्मन देखकर भी काफी घबरा जाता है.
घबरा जाते हैं मूंछ देख के? आप लोगों को लगता है कि रजाक साहब की मूंछ देख के लोग घबरा जाते हैं? हाँ, घबरा जाते हैं. मुझे तो आपकी इतनी स्माइल ही अच्छी है कि कोई घबरा ही ना आपसे बात करके. पर आप बताइए, आप रोज यहाँ पर ब्रीफिंग करते हैं, आप अपने बारे में बताइए, आप फौज में क्यों आए?
सबसे पहले तो हमारी सोच ये थी फौज में आने की
जी,
कि हमने इस भारत देश में जन्म लिया है
जी,
ताकि हम देश के प्रति
जी
कुछ कर सकें. इसलिए हमने फौज को चूज किया और फौज में हम भर्ती हुए. हर सैनिक का यही एक मुद्दा होता है कि भारत के तिरंगे की रक्षा करें
जी
और भारत देश के लिए कुछ कर सकें।
आपकी परिवार में और भी लोग हैं फौज से?
हम चार ब्रदर हैं जिसमें हम तीन इंडियन आर्मी से ताल्लुक रखते हैं
जी। और जो आज की यंगस्टर्स हैं जिनसे आप कहना चाहेंगे कि आओ फौज में भर्ती हो, आप उनको क्या संदेश देंगे?
मैं तो यही संदेश दूंगा कि हर एक यंग जो है नौजवान फौज में आए, फौज से बढ़कर और कोई भी संस्था नहीं है। अगर देश की सेवा करना है तो
जी
फौज को ज्वाइन करना चाहिए।
आई वॉन्ट टू नाउ हियर फ्रॉम आर टू परमवीर चक्र विनर्स हियर। वी हैव हियर संजय कुमार जी एंड योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, आपसे शुरू करते हो। आपकी जो आपके साथ जो हुआ टाइगर हिल जिसके बेस पे हम यहाँ आज बैठे हुए हैं, यू वर इंस्ट्रूमेंटल इन दैट विक्ट्री। और आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, पूरा देश आपको जानता है कि किस तरह से आपकी बॉडी में 15 बुलेट्स थे और पाकिस्तानी आर्मी ने समझा कि यू आर डेड, और लेकिन आपके पॉकेट में एक ग्रेनेड थी और आपने उस ग्रेनेड को हर्ल करके यू वर एबल टू इन अ सेंस कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिक्लेमिंग ऑफ टाइगर हिल। आज आप यहाँ पर वापस हैं, टाइगर हिल आपके पीछे है, क्या महसूस करते हैं आप?
एक गर्व भी महसूस करता हूँ
जी,
और दुख भी है
जी
कि जो मेरे साथ में थे वो आज मेरे साथ नहीं है
जी।
उनकी यादें हमारे साथ में हैं और इन वादियों के अंदर उनकी आवाज आज भी गूंजती है। मुझे नहीं लगता कि जैसे 15 साल बीत गए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ही हमने कल बिछड़े।
इट फील्स लाइक यस्टरडे, बिल्कुल। और आपके कोई साथी जो आपके साथ थे कोई बच नहीं पाए, सिर्फ आप ही यू वर एबल टू मेक इट अलाइव।
हाँ, क्योंकि उस समय जो परिस्थिति थी वो इसी प्रकार थी। ये टाइगर हिल टॉप के ऊपर जब हम पहुंचे तो टॉप वहां से 50 या 60 मीटर रहा होगा
जी।
तब हमारा जो है मुठभेड़ हुआ, टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया था, नीचे से कोई सपोर्ट था नहीं। सुबह 5:30 बजे हमारा दुश्मन का काउंटर शुरू हुआ था हमला
जी।
और 10:30 बज गए थे, अम्नेशन भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था
जी।
सिर्फ उस समय एक ही था कि मरना है, लेकिन मरने से पहले जितने से ज्यादा ज्यादा पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार सकते हैं वो हम उतारेंगे। इसलिए हमने अम्नेशन को उसी वक्त के लिए संभाल करके रखा कि एक भी गोली बेकार ना जाए, एक गोली से एक दुश्मन जो है जरूर हम मारेंगे। उसी मुद्दे को हमने हासिल किया और दिन के 10:30 बजे के बाद उनके 30-35 पाकिस्तानी जवान जब हमारे ऊपर काउंटर अटैक के लिए आए तो वो एक ऐसा पल, ऐसा क्षण जो जीवन भर मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
लेकिन जब आप कर्नल थापा, यू वांटेड टू कम इन? या
आई वांट टू टेल समथिंग इन एडिशन टू हिज हीरोइज्म
जी।
ही वाज इन द हॉस्पिटल
जी
व्हेन जनरल मलिक विजिटेड हिम
जी,
एंड बोथ हिज आर्म्स एंड लेग्स हैड नंबर ऑफ ट्यूब्स एंड वेरियस अदर थिंग्स, and you know he was like living like a person who's crucified. And then General Malik asked him kaisa hai, and he says sab theek hai sir. And that's the spirit of the Indian army.
That's amazing. aapse army chief ne pucha aap kaise hain, Colonel Thapar keh rahe hain that you were virtually, matlab aapki limbs yeah. disembodied ho gaye the
yeah.
Left arm aapki shayad ek tarah se it had come apart from your body, lekin aapne kaha main bilkul theek hu.
Yes ma'am.
आपको लगा आप बिल्कुल ठीक है? आपको डर नहीं लगा?
नहीं, डर का तो कोई सवाल ही नहीं था।
मौत से डर नहीं लगता?
डर तब तक लगता है जब डर दूर होता है, लेकिन जब डर नजदीक आता है तो फिर डर नहीं लगता है। उस समय जब यहाँ पे आए थे हम
जी,
तो मेरी बटालियन इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई चढ़ रही थी
जी,
तो उसी समय मैं शादी करके आया था।
अच्छा,
तो यहाँ पर आके एकदम से उस माहौल से और इस माहौल में आए तो एक दिन जरूर डर लगा, लेकिन फिर 22 दिन इस पहाड़ी के ऊपर जब लड़ाई लड़ी तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और 22 दिन हमने बहुत से साथियों को खोया, बहुत से जवानों को अपने साथ में खोया, लेकिन लास्ट में ऑपरेशन विजय की शुरुआत इस तोलोलिंग पहाड़ी से की
जी।
और मुझे फक्र है अपनी बटालियंस के ऊपर कि जो ऑपरेशन विजय का टर्निंग पॉइंट टाइगर हिल टॉप
जी,
इसको जीतने के बाद में हमारा ऑपरेशन विजय का एक टर्निंग पॉइंट आ गया था।
संजय जी, आपसे पूछूंगी, योगेंद्र जी कहते हैं कि डर शायद शुरू में थोड़ा सा लगता है, उसके बाद द फेयर गोज अवे, डर चला जाता है। मैं, आप लोग बहुत बहुत यंग थे, मैं यहाँ पे थी 1999 में, नितिन भी थे। मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वी मेट वर इन देयर अर्ली 20s, कोई 21, कोई 22, कोई 23, कोई 25, इसी तरह के। उस उम्र में पूरी जिंदगी आगे होती है, तो कैसे आप लोग कहते हैं कि मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि उस समय तो लगता है पूरी जिंदगी बाकी है अभी जीने के लिए।
लेकिन मैम ऐसा कुछ नहीं है कि डर उस टाइम तक लगता है जब तक आपका और दुश्मन का सामना नहीं हुआ। उससे पहले जब तक, जैसे यादव साहब ने कहा कि डर जब तक दूर है, यानी जब तक दुश्मन से आप लोग दूर हैं
जी,
तब तक डर है। जब गोली दोनों साइड से शुरू हो जाती है उसके बाद कोई डर नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद सबको पता है कि कौन जिएगा कौन मरेगा। यानी जिसके बीच में जो हमने ट्रेनिंग, जैसे हमें विश्वास था, जो हमने ट्रेनिंग की है, अगर उसके हिसाब से हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे तो अवश्य कामयाब होंगे। और हमारी बटालियन ने जब यहाँ पे कार्रवाई शुरू की थी तो यहाँ पे सबसे कम कैजुअलिटी के साथ हमारी बटालियन ने यहाँ से शुरुआत की थी। और यहाँ पे जब 540 को हमने कैप्चर किया था कैप्टन बत्रा साहब की कमांड के दौरान
जी, जी।
और कैप्टन जम्बाल जो दूसरी कंपनी को कमांड कर रहे थे
जी।
तो इतनी कम कैजुअलिटी और इतनी बड़ी हाइट्स को कैप्चर करना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। तो ये लीडरशिप और जो जवानों का सहयोग था
जी,
वही था। वो जो ट्रेनिंग उन्होंने पाई थी उस हिसाब से जो कार्रवाई की, जो हमारे कमांडर थे, जो उन्होंने गाइडलाइन दी, जो उन्होंने करने के लिए कहा, जिस प्रकार से कार्रवाई करने के लिए कहा, उस तरीके से कार्रवाई की।
मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगी एंड देन आई ओपन अप द पैनल। आपने कहा डर चला जाता है, उस समय डर के लिए ना टाइम होता है और वो होता ही नहीं, वो एक जहन में नहीं है एक सोल्जर।
तो सिर्फ जो माइंड होता है बिल्कुल वाश होता है।
अपनी फैमिलीज के बारे में उस समय आपने सोचा? आपने कहा आप नई शादी करके आए थे योगेंद्र जी, लेकिन आप लोग भी इंसान हैं। उस समय लगता है कि पीछे घर वाले हैं, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा? योगेंद्र जी,
नहीं, उस समय कुछ भी नजर नहीं आता है,
फैमिली नहीं नजर आती,
कुछ भी नजर नहीं आता है। उस समय सिर्फ अपना मिशन याद आता है कि मैं इस मिशन को किस प्रकार से पूरा करूंगा, और उस मिशन के ऊपर ही उसका पूरा ध्यान केंद्रित होता है
जी।
और तभी हमारी फौज की एक कामयाबी हमें मिलती है। मुझे सच बताऊं कि मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैं शादी करके आया हूं,
सब भूल गया
कि मेरा कोई परिवार भी है। मेरा परिवार है जो मेरे साथ में है, वो मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का एक अहम हिस्सा हूं, और इस परिवार की रक्षा करना और इनका साथ देना मेरा धर्म है। बस यही याद रहता है। उस समय सिर्फ अपने तिरंगे को याद रखते हैं और अपने उस मिशन को याद रखते हैं, बाकी कोई याद नहीं रखते।
And I want to come to you, Vishal, but Nitin, you were wanting to come in here.
Yeah. I wanted to just point out that the two Paramvir Chakra winners have spoken not just about themselves, but also about the team spirit.
Yes.
They spoke about the commander's Adesh,
yes,
the leadership of the young officers, yes, and the cooperation from the Jawans. Now, that's the Indian Army for you.
Vishal, जैसे योगेंद्र जी ने कहा, एक जवान के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक सैनिक के लिए उसकी पलटन है। The family takes a back step. As Vikram's twin brother, how did you and your parents cope with the fact that family will come second, country will come first, forge will come first, Paltan will come first?
How did we cope up? You know, I still remember when the cadets, the gentlemen cadets pass out from the academy, the oath which they take, while I don't remember that oath, but I remember a line, when they take that oath, they tell that we dedicate ourselves now to the nation.
Hmm.
And forces is the first family.
I know, but how difficult it must be. Your three family members sitting here. You're a Fauji yourself, Colonel Thapar, lekin phir bhi.
Dekhiye.
Aap wo chithiya. I mean, you know, I was in tears when Vishal left a letter for Vikram here. You know, you're speaking to the clouds here, hoping that your son, your brother, your son can hear your words. Kabhi to lagta hoga. Main ek controversial sawal poochne wali hoon. कि शायद कर्नल थापर, कभी लगता होगा कि विजयंत को जाना ही नहीं चाहिए था?
नहीं, जिंदगी की लंबाई से नहीं मापी जानी चाहिए जिंदगी, उसके कंटेंट से मापा जाना चाहिए। आपने क्या किया, मैं बड़ा खुश हूँ, चाहे दुखी हूँ पिता होने के नाते,
बिकॉज आई कैन सी दैट इवन टुडे इट्स नॉट इजी टू टॉक अबाउट।
दुखी हूँ एक पिता होने के नाते, लेकिन जो मेरा बेटा कर गया इस देश के खातिर, मोटिवेशन के खातिर, ये जो नौजवान आप कह रहे हैं उनके लिए, मेरे को कम से कम रोज 10-15 मेल आती हैं। ये जो जवान खड़े हैं आपके चारों तरफ
जी,
इनके लिए एक मिसाल छोड़ गया। जब ये फिर कभी जाएंगे लड़ाई के अंदर, इनको इस स्टैंडर्ड तक आना पड़ेगा, उसके नीचे नहीं, उसके ऊपर जाना पड़ेगा।
रेजिंग द बार।
हाँ, रेजिंग द बार। एंड देयरफॉर इफ यू आर एबल टू क्रिएट एन एनवायरमेंट देन यू डोंट रियली थिंक that family goes into the background.
So it's not the length of life, it's how you live that life.
How? Matter. With intensity with which you have lived.
But I want to add, yeah. You know, I still remember when Vikram used to write letters to me. I don't know, it's a, you know, a quote, I don't know who's written this quote. And when he was fighting the battle, you know, there was a thought written that if death comes to me before I prove my blood, I promise I'll kill the death. I don't know who said it. But it was written on the Vikram's letter, the last thought. And, you know, as Colonel Thapar said, I don't know, umpteen numbers of people would have, you know, asked me about Vikram the last 15 years.
Mm.
Right. So what he has done, everybody has to die. And if you remember last time when we met during the 10th anniversary, I told you that I lost my fear of death because when I saw Vikram losing his life, like, you know, the two PVCs, Yogendraji and Sanjayji said that when you go up, you only have a mission. Right. That's what the Indian Army is. So, right. They were so focused. And today, I think he's remembered. Hmm. He set a benchmark. I think his name is recorded in the
Sher Shah.
Sher Shah.
And ye dil mange more.
Right. While it's a personal loss, I miss him. Of course, yes, that's bound to happen. Is the loss irreparable? The answer is yes. But is it that he's died? For me, he's still alive. He still rules.
Yeah.
So that's.
And you know his one sentence. Advertisement hoti thi, lekin ek nation ka slogan ban gaya. He said ye dil mange more in his interview to me.
Yeah.
And तब से योगेंद्र जी, संजय जी, आपको भी विक्रम बत्रा की यादाश्त तो जरूर होगी, इसके बारे में आप कुछ बोलें कि ये दिल मांगे मोर एक तरह से एक देश के लिए एक मोटो बन गया। योगेंद्र जी,
बिल्कुल, जब इन्होंने यहाँ पे जो है ये पहली फतह किया 13 जैकरीफ ने
जी,
तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो है बोला कि ये दिल मांगे मोर
जी,
ये हम जैसे जो नए जवान थे हमारे लिए एक बहुत मोटिवेशन फैक्टर बना कि एक नया सैनिक, एक नया हमारा ऑफिसर ये बोल रहा है कि दिल मांगे मोर, हमें कुछ और चाहिए, तो हमारे अंदर एक नया जज्बा भरा, एक नई प्रेरणा शक्ति हमें मिली और उसी की बदौलत इस वैली के अंदर फौज के हर एक दस्ते ने अपनी क्षमता से बढ़कर के काम किया और सफलताएं हासिल करी।
यहाँ पर हमारे पास है डॉक्टर राजेश, और मुझे याद है 1999 में हम विक्रम बत्रा की बात कर रहे हैं, जब हम इंटरव्यू के बाद एक टेंट में बैठे थे तो आप भी वहां थे, आपने मुझे पुरानी तस्वीर भी दिखाई, वहां विक्रम भी थे और बिल्कुल एवरीबडी वॉज स्माइलिंग। मुझे इतना मूविंग लगा दैट एवरीबडी वॉज जस्ट स्माइलिंग एंड लिटरली ऐसे लगा दैट इट वॉज अ फेयरलेस मोमेंट। योर मेमरीज टूडे ऑफ दैट मोमेंट एंड ऑल्सो विक्रम।
या आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ विक्रम। इवन जब मैं यहाँ पे आता हूँ इस भूमि पे, तो मुझे सारा लड़ाई आंखों के सामने आती है। जब दिल मांगे मोर ये बात हुई थी तो उस 0.5140 पे चढ़ के और उसके बाद दिल मांगे मोर, ये बड़ा मुश्किल होता है कहना। उसीलिए जब आप आए थे वहाँ पे भी तो हम यही बोल रहे थे कि अभी कौन से मिशन पे जाना है,
कि अगली मिशन बताओ,
अगली मिशन बताओ। तो इसलिए सारे के सारे बटालियन हमारे कर्नल वाईके जोशी सर थे, उनको बोल रहे थे कि अभी कौन से मिशन में जाना है, 0.5140 की उसके भी ऊपर।
तो आज आप विक्रम को कैसे याद करते हैं?
विक्रम हमेशा मेरे पास होता है। कल जब मैं विशाल के साथ बात कर रहा था तो जब भी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, है ना, जैसे सर ने भी बताया कि रिस्पेक्ट, जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं ब्रेवरी के बारे में तब तक लोग आएंगे नहीं। मैं छोटे छोटे बच्चों के पास जब जाता हूँ तो वो जब पूछते हैं कि आप कारगिल में सही में थे, आप पढ़ाई पर चढ़े थे, मैंने चढ़े ही नहीं थे। जो आप पढ़ते हैं, जो आपको पता है विक्रम के बारे में, बाकी लोगों के बारे में, तो जब मैं उनको बताता हूँ सारी स्टोरी, बिकॉज मैं इस पहाड़ के हर स्टोन के ऊपर मैं गया हूँ साथ उनके सारे जवान के साथ, तो वो एकदम से बोलते हैं कि हमें भी ज्वाइन करना है, हमें भी ज्वाइन करना है फौज। पर आफ्टर जो 12th तक आते हैं
जी,
तो मुझे लगता है कि बचपन से लेके हमने कॉलेजेस में भी इसका मोटिवेशन।
सो हाउ डू वी इंस्पायर द यंग? आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू हियर फ्रॉम सम ऑफ आवर यंग ऑफिसर्स हु आर हियर, एंड लेट मी स्टार्ट विद यू कुमार। हाउ ओल्ड आर यू?
25 इयर्स।
25। एंड हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन नाउ इन द आर्मी?
4 इयर्स।
व्हाट मेड यू जॉइन?
फॉर मी इनिशियली इफ यू से कारगिल वॉर,
इट इंस्पायर्ड यू,
द हीरोइज्म ऑफ द मार्टियर्स एंड द ब्रेव पर्सन हु आर प्रेजेंट ओवर हियर, they inspired us and the uniform. And when I was in 11th and 12th, that time the movie Lakshya was there, which inspired me.
So Lakshya.
Yeah.
Okay. Ankur, what inspired you to join the military?
Well, coming to the army was one of my motivation factors since my childhood. Media has got a lot of role to play in it. I've grown up watching serials like Paramveer Chakra, Fauji.
You're sitting next to two Paramveer Chakras today.
Yeah, I'm glad I'm sitting next to them because in 99, I've just heard their names. Today I'm meeting them in person. And obviously, this Vikram Batra, Amol Kalia, they became household names.
Yes.
And that was one of the motivation factors that this is one of the noblest professions and where you can do service to the country. And also, you have respect in the society. And the uniform which you wear gives you a sense of pride. As Kan Thapar brought out, it's the content and
of
not,
your
the,
life and not the length.
So what you have done in that.
Now, it's wonderful to actually see more women in uniform. And Mandira, let me ask you, what made you join?
Army wasn't a part of the decided plan that you are looking at when you're in school in the formative years. I wanted to be a lawyer and I was totally at it. And but it was amazing to see how motivated my father was to send me. And he always said one son to the nation, but we were two sisters. And if the first one didn't agree, he ensured he brainwashed me enough so that I am in the army.
Is your father from the military?
Yes, he is. He's served in 12 Jack Rifles. And the memory I have of Kargil is, in fact, when he was here. And there was very poor communication at that time.
Where was he stationed on duty?
He was in Kargil during the time of the war. And we just had television to possibly find out what our father was up to. And I remember being in separated family accommodation in class 4th or 5th. And we were a house of four in a double story. And all the three houses had coffins in. And those are the memories I have of Kargil last.
But you weren't scared for your father at that time?
We didn't know much of what's happening.
Kuch pata hi nahi lagta tha. Wo ek phone call karna hi itna mushkil hota.
We just heard stories that their coffins coming in and how they got the news is one boy or one officer from the unit has come, knocked the door and told the lady and the child and the children back home that your father is no more. And that's how news were broken in most of the families in Lucknow separated family accommodation. And moreover, then we moved to Delhi. I kept on studying, wanted to be a lawyer. But my dad ensured that I come into the army. And I'm glad he took that decision.
I'll ask all three of you. Ankur, I'll start with you. What would you say to young people today who are not coming to the military?
I would definitely say that though society has turned more materialistic, but still life has got much more of it. They are minting money, but they don't have time to spend it. And the quality and the quality of life which army offers you is really good. And it's, as I said, it's one of the noblest professions. And I feel that every citizen of India should join army.
Every citizen.
Like they follow it in Israel.
You mean compulsory. It should be some compulsory service.
It should be there.
Kumar?
What I think that whenever any friend of mine who is a civilian right now, whenever he meets me, now he feel a urge that he should join army.
Acha.
So more the people interact with them, the more you tell about the army, then they will be forced, then they'll be willing and motivated to join the army. So we need to tell about our life and what we do and everything about the army.
Mandira?
Well, I think most of the youngsters now do not want to get out of the comfort zone, hence do not want to venture out on this league.
Yeah.
But the deal is, which job is comfortable? So why not try something different? I mean, who is not proud of looking at a soldier? Who is not proud of looking at somebody in uniform? And once we get into uniforms, we aren't girls anymore. We just leave it behind. I think we are girls only when we go back home on leave into places where people dress up more colorful and things are things you call you back into civilization and where there is cinema and then there's movies and there's Bollywood. But otherwise, when you come here, I think you hardly think that there is a difference in terms of gender. When a soldier is looking up to you for solutions, and myself being just 22, 23, and a man double your age is coming with a family problem, he's not looking for leave as an answer. He's looking for a problem. He is looking for a solution to that problem. And you as a troop commander has to deliver that. That keeps you motivated even if you're having a lull moment in terms of your job profile.
Okay.
That you need to come back and serve for the boys who look
up
to you.
So you're saying why not try this, which adds so much more value to life. Colonel Rakesh, message to youngsters today.
Marka, just a word. Every profession, everybody contributes towards the nation.
Yeah.
But in this profession, the outcome that you get is very tangible. the passion for the uniform, the passion, the respect that you get, the kind of work that you do, the life quality that this organization provides is phenomenal, unparalleled even today, irrespective of whatever market opening or the economy that was spoken about. I was doing economics honors in Hindu College, Delhi, and I quit that and I joined Army, and I have no regrets, so I'm very happy today. So maybe a word to everybody.
What made you join?
I had decided I have to do something different in life. Maybe this was this time, and I'm very happy today.
Nitin, how serious is the shortfall?
The shortfall is quite serious. In fact, at the cutting edge level, of Mandira's level or Kumar's level, the shortfall is almost 6,000, 7,000 people. At the higher level, everybody is adequately staffed, all the positions are staffed. But the cutting edge level, which is the strength of the Indian Army, we are still facing that shortage. And therefore, I think the young officers and the young soldiers, they should be the brand ambassadors. Each one of them should be a brand ambassador of the Army, rather than going in for the advertising campaign. Just all of them should be speaking at various places, motivate people. That's something that should be done.
Colonel Thapar, you want to come in on that? You know, when you lose a child, would you still motivate other children to join?
Yes, of course. You see, when I was the CO,
yes,
I used to tell the boys, don't worry about your life.
Yes.
Worry about your mission. Unfortunately, this time, it happened to be my son. It had to be a son of somebody. And therefore, I will never hesitate, never, never hesitate to tell anyone who is aspiring for a life, wholesome life, a life, meaningful life, a adventurous life, to come to the Army. It offers you everything. There's nothing that a man desires which is not available here.
Lekin sir, aapse puchungi, maine kahin padha that Amol Kalia ki jo body thi, usko bhi milne mein thoda waqt laga. It must have been very difficult for you. Aap logon ke liye bahut mushkil hua hoga.
हाँ, 10 दिन के लिए उसके बॉडी का वेट करना आसान काम नहीं था. मेरे लिए तो वो 10 दिन से ही हर रोज़ जाता था, तो बहुत तकलीफ़ वाले दिन थे वो 10 दिन. उसका बॉडी आने के बाद जो सम्मान लोगों ने दिया है, उस पीड़ा को कम किया उसने. मैं आज भी अपने देशवासियों के प्रति, अपनी फ़ौज के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ उनका, कि उन लोगों ने जो शहीदों को सम्मान दिया जाना चाहिए वो मिलता है. और यही कारण है कि हम पब्लिक को मोटिवेट करें. मैं अभी भी स्कूल्स में जाता हूँ, वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ. मैं आप एग्जांपल देता हूँ कि अमोल के जाने के बाद भी, बल्कि उन दिनों में ही मैंने अपना दूसरा बेटा भी फौज में भेजा.
उन्हीं दिनों में?
हाँ, अमोल को नहीं, उनके बाद तो नहीं गया था, उससे पहले ही था, लेकिन मेरी ये भावना थी कि बच्चे फौज में जाएं.
तो आज आपका दूसरा बेटा भी फौज में?
ही इज विंग कमांडर इन एयरफोर्स.
एयरफोर्स में. तो डर लगता है कभी उनके बारे में सोच के कि कोई एक बेटे को कुछ हो गया, दूसरे बेटे को कुछ ना हो?
ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ. इस देश को सर्वाइव करने के लिए किसी को तो कुछ करना पड़ेगा. अगर मेरा बेटा, खाली मेरा बेटा चला गया, बाकी तो जिंदा है ना, तो किसी को जाना पड़ेगा. कोई ये कोई खास बात नहीं है. जिसने मन सोच लिया और ये ऐसा नोबलेस्ट प्रोफेशन है, उसके लिए कतराना नहीं चाहिए. मैं स्कूलों में बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, दूसरों को मोटिवेट करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ की लाइफ के बारे में उनको बताता हूँ. तो मुझे गर्व है कि कई बच्चे, 10-15-20 बच्चे मेरे इंस्पिरेशन से भी गए हैं. जब वो एनडीए में सिलेक्ट होते, मैं उनके घर पे जाके उनको ऑनर करके, अमोल का मोमेंटो या कुछ और देके उनके घर पे जाके मैं उनको.
और आपने कहा कि वो इज्जत से थोड़ा दर्द भी कम होता है, जो पीड़ा है वो थोड़ी कम होती
है. बिल्कुल ऐसा है.
आखिर में संजय जी और योगेंद्र जी, आपसे पूछूंगी. संजय जी, कैसे आप मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप लोग हैं ब्रांड एम्बेसडर्स, आप जो है गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, और यहाँ इतने जो बहादुर लोग हैं, और ये जो फैमिलीज हैं जो मार्टर्स की, आप लोग हैं ब्रांड एम्बेसडर्स. कोई एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कन्वे कर सकती, जैसे नितिन ने कहा, जो आप लोग कन्वे कर सकते हैं. संजय जी, कैसे मोटिवेट करेंगे आज आप जो यंग लोग हैं जो फौज में नहीं है, कि फौज में आए? क्योंकि लोग कहते हैं पैसा नहीं है, लोग कहते हैं कि भाई आप जवान की लाइफ को देख लीजिए, 35 और 40 के बीच में उनको रिटायर कर दिया जाता है, कुछ और काम ढूंढना पड़ता है. आप क्या बोलेंगे संजय जी?
देखिए मैम, इसके लिए तो सबसे बड़ी ये बात है कि जो स्कूल लेवल है
जी,
हम लोग जैसे कारगिल ऑपरेशन का अवार्ड मिलने के बाद हमें काफ़ी बार स्कूल कॉलेज में जाने का मौका मिला
जी.
और हमारी भरपूर यही कोशिश रही है कि हम लोग जो वहाँ पे 9th 10th से लेके 11th 12th तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग उन ज़्यादातर उस लेवल पे लेक्चर के लिए जाते थे. तो हमने हर लेक्चर में अपने मोटिवेशन में यही उनको सुझाव दिया कि सबसे बड़ी जो एक संस्था है, जो एक आर्मी में इज्जत है, जो हम इस ड्रेस की जो इज्जत करते हैं, इसको पहनने के बाद सिविलियन में वो चीज़ नहीं है, सिविलियन और फौज में जो डिसिप्लिन है, जो चीज़ यहाँ पे है मिल सकती है आपको, वो दूसरे किसी ग्राउंड में नहीं है
जी।
और हमने हर जगह इसी चीज़ को अप्रूव करके दिखाया, जो यहाँ पे ऑपरेशन के बारे में, उन हालात के बारे में उनको वो चीज़ें बताई कि जो यहाँ से संबंधित थी, जो हमने लड़ाई से संबंधित जो फौज ने यहाँ पे किया
जी।
और जो फौज को उसके बाद इसके रिजल्ट मिले, जो इज्जत मिली इस देश में पूरे वर्ल्ड में, तो हमने हमेशा यही कोशिश की है और हमेशा इसके बाद भी करते रहेंगे जब तक हमें ये मौका मिलता रहेगा
जी। और बहुत लोग आपसे इंस्पायर हुए हैं योगेंद्र जी, मैंने कहीं पढ़ा कि सेम नेम के आप ही के यूनिट में एक और योगेंद्र जी भी थे, उस मामले को लेकर कुछ कंफ्यूजन भी हुआ, उसके बाद आप उनकी वाइफ को मिलने गए और उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा कि उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे, और आपने उनको कहा कि जब व्हेन यू आर नियर डेथ कोई लास्ट वर्ड्स इस तरह से होते नहीं है, थोड़ा बताइए उसके बारे में।
हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल के बाद जब मैं वहाँ पर उनके घर पे गया
जी,
तो उनकी मिसिस से मिला, तो उन्होंने पूछा कि जो है उस समय उन्होंने क्या बोला, मैं उस समय तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, नहीं उन्होंने आ तक भी नहीं करी। हाँ, उससे पहले जरूर बोला था
जी
कि एक दिन पहले हमने जो है चिट्ठियाँ लिखी थी अपने घर के लिए
जी,
तो आपस में हम बात कर रहे थे हम, तो उन्होंने बोला यार अगर मैं मर गया तो मेरे घर पर संदेश देना और मेरी मिसिज को बताना कि ये 10 लाख मिल रहे थे उस समय, गवर्नमेंटों का अलाउंसमेंट हो गया था, बोला 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, बोला 5 लाख मेरी बेटी के नाम करा देना, मिसिज को बताना, बाकी बेटे तो अपने आप पढ़ करके जो है अपने कंधों पे खड़े हो जाएंगे। तो मगर ये शब्द जो है हमने पहले के दिन बोले थे, और उन्होंने फिर मेरे से पूछा यार, मैं उनको बताया कि अगर मैं मर गया, हम दोनों ही मर गए फिर क्या होगा, बोला ठीक है रजिस्टर में लिखते हैं, हमने एक रजिस्टर में लिखा। तो बोला तेरी क्या इच्छा है, मगर मेरी इच्छा ये है कि अगर मैं मर गया तो आधा पैसा फैमिली को, मिसिज को, और आधा मेरे माँ बाप को दिया जाए, हमने ऐसे प्रकार के जो है बताया।
तो यू एक्चुअली डिस्कस डेथ?
हाँ, तो दोनों को बताया, फिर उन्होंने जो है वो किया
जी।
दो आज जो कारगिल के हमारे बीच में जो हीरो हैं, हमारे लिए एक नमूना है, खास करके संजय सिंह और दूसरे योगेंद्र यादव। मैं उनकी शान में कुछ अशार पेश करना चाहता हूं जो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले लिखा था, और इन्हीं हस्तियों के लिए वो अशार सेटेबुल करता है, और वो अशार ये हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यही दो शख्सियतों के लिए एक और अशार अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस अशार के साथ मैं यहाँ पे उनकी शान में एक और अशार पेश करता हूँ कि जीने की आरजू है तो इस अदा से जी। ये दोनों संजय सिंह और
संजय
जी जी और योगेंद्र यादव के लिए, कि जीने की आरजू है तो इस अदा से जी, के आलम में तेरे बाद तेरी दास्तां रहे।
तो आप लोग बहुत इंस्पिरेशनल हैं। आई हैव टू एंड नाउ कर्नल थापर, लास्ट थॉट्स।
वॉर्स आर फॉट विद वेपन्स बट दे आर वन बाय मेन। लड़ाइयां जो हैं वो हथियारों के साथ लड़ी जाती हैं, लेकिन जीत आप लोग दिलाएंगे। तो इसलिए आप कीपिंग दैम मोटिवेटेड, कीपिंग द आर्मी लाइक अ रेस हॉर्स रेडी टू विन।
जी,
इट्स नो यूज कीपिंग अ हॉर्स, ग्रूमिंग हिम एंड देन ही डजंट विन। देयर इज ओनली वन एजेंडा फॉर द आर्मी टू विन।
रजाक साहब, हां जी, क्या संदेश है यंगस्टर्स के लिए?
यंगस्टर के लिए तो यही संदेश है, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे कारगिल वार मेमोरियल में इसका रिस्पॉन्स है। मेरे पास कम से कम भी पर डे के 500-600 लोग आते हैं यहाँ पे
जी,
और उन सबको मैं यही ब्रीफ करता हूँ, कारगिल वार मेमोरियल की स्टोरी उन सबको मैं बताता हूँ,
और उसी से इंस्पायर करते हूं।
उसी से इंस्पायर करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें
जी। ये दिल मांगे मोर, जैसे कि विक्रम बत्रा ने,
जैसे उन्होंने ये कहा था कि ये दिल मांगे मोर
जी,
और उनका एक और भी था राइट चॉइस बेबी, उन्होंने 0.4875 पे ये भी कहा था। तो मैं
राइट चॉइस बेबी,
मैं उसके लिए जो है जनरल योगेंद्र सिंह यादव साहब
जी,
संजय कुमार साहब
जी,
इनके पूरे अवार्डेड
जी,
और पूरी हिस्ट्री कारगिल वार की जो है मैं अपने प्रेजेंटेशन में सबको बताता हूँ। इसके अलावा जो आमने सामने मेरे खड़े होते हैं सुनते हैं, उसके अलावा भी यूट्यूब में जो डाल रखा है हमने कि कहीं भी कोई सिविलियन
उसको देख ले,
उसको देखे और काफी इंप्रेसिव हो और इंडियन आर्मी की तरफ जो है ज्वाइन करने की कोशिश करें।
I'll give you the last word, Vishal. Share with our viewers. I know because I was there with you. What you said in your last letter to Vikram when you left it here on Batra Top.
In fact, I will tell you first. He had written his last letter that life is a total risk. Anything can happen here. And he had written, and of course, he, you know, since I had just stepped into my career. So he written, Vishal, just believe in yourself, and I'm sure God is looking at you. Do your best. And you'll definitely rise to the highest.
And you said what in your letter?
And I said that don't worry for this. We are already watching you. You're already leading the show. And we're waiting for you to come back.
Well, it's beautiful. And I just want to say thank you, not just from our team, but from the entire country to all of you, wonderful people who have inspired so many of us. And saluting the soldier has to go beyond lip service. It has to mean something substantive. It has to draw in our young people. And all of you are the best brand ambassadors that we could hope to ask for. So from these hallowed grounds of the Veer Bhumi at the Kargil War Memorial, it's only befitting that we now give the last word to this absolutely fabulous army band here.
Hey!